موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دو فرعونوں سے پڑا ہے، ایک کا نام تھا رامسیس اور دوسرا تھا منفتح. منفتح جب موسیٰ علیہ السلام کا بچپن تھا، جو ذکر ہم سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص میں آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس، اور جس کے سامنے اب جا کر یہ ساری کہانیاں ہو رہی ہیں اور جو ڈوب رہا ہے اس کا نام ہے منفتح، وہ اسی کا بیٹا تھا. تو بہرحال اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ان سے کیا جاتا تھا. اور باقی بچوں کے قتل کی ساری کہانی سورۃ قصص میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کی موجوں کے سامنے کر دیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ کسی قوم کے لیے، اسپیشلی آپ مسلم قوم پہ لیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اس کی نرینہ اولاد کو قتل کر دیا جائے، بیٹے ہی مار دیے جائیں تو نسلیں ختم ہوئیں. عورتوں کو میں گھروں میں رکھ کر ایک تو ان سے خدمت لی جائے، دوسری ان سے جو بھی ان کی بد تہذیبی کی جائے. تو کسی مسلمان قوم پہ، یہ بہت ٹچی بات ہے جو بھی کہنے لگی ہوں، ریسورسز مسلمانوں کے ہوں اور خدمت وہ کر رہے ہیں غیروں کی، یہ بھی ایک مسلمان قوم پہ لمحہ فکری ہے. آج اگر اپنے ملکوں سے دیکھیے، ہمارے ملکوں کا کریم کراؤڈ ملک سے بھاگنے کو تیار ہے. پڑھنے باہر چلے گئے تو پھر تو گئے، پہلے ہی چلے گئے. اور جو اپنے ملک میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا، تو وہ ایڑیاں اچھال اچھال کے باہر جانے کے لیے. میں اکثر پوچھتی ہوں کیوں، میری بحث ہی رہتی ہے اکثر لوگ، ہمارے اپنے خاندان میں ایسے کئی قصے ہیں، بھائی کیوں پاکستان میں کیا مسئلہ نہیں، ادھر جاب نہیں ہے، ادھر ہمیں روٹی نہیں، یہ نہیں، وہ. تو رسک کے لیے تو آپ دوسرے ملک نہیں جا سکتے. یعنی اگر آپ مجھے کہیں نا کہ میں ناروے رسک کے لیے آؤں، تو یہ میرے لیے جائز ہی نہیں ہوگا، نہ آپ کے لیے جائز ہوگا. بات سمجھ گئے، یہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. تو جب ملک میں رہ گئے وہ نتھو پتھو خیر ہے، تو پھر انہوں نے یہی کچھ کرنا نا، روٹی کما لی، باتیں سن لی، باتیں کرا لی، اور بیٹھ کے فیس بک پہ تصویریں ڈالتے رہے. آج یہ ہمارے لیے بھی آزمائش کا دور ہے. جب آپ اپنا ریسورسز واپس اپنے مسلمز کو سرو کرنے میں لگائیں گے، کیا آپ کو نہیں لگتا مسلمان انٹیلیجنٹ قوم ہے؟ واللہ ہی آپ ایک ٹوٹی پھوٹی، یہ مشین پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ گھڑی آپ اس کو یہاں دکھائیں گے، کہیں گے اس کو دریا میں پھینک دو، آپ اس کو پاکستان لے جائیں، وہ اس کے نیچے ایک نئی شکل بنا کے ریڈیو بھی لگا دیں گے، گھڑی بھی ٹھیک کر دیں گے. ہمارے ملکوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، پرانی چیزیں ٹھیک کرنی کو ہمارے ملکوں سے جانے، ٹیلنٹ ہے. کبھی ورک شاپوں کو دیکھے، مکینکس کو دیکھے، الحمدللہ محنتی قوم ہے، ہارڈ ورکنگ ہے. بٹ یہ جو برین ہے نا، اور برین کون سا ہوتا ہے کسی قوم کا؟ پڑھے لکھے لوگ. جتنا ممکن ہے اپنے ملکوں کا ریسورسز اپنے ملکوں میں یوز کریں، ورنہ برین باہر چلا گیا تو ہاتھ پاؤں بہت ہیں ادھر. دیکھیں نا ورکرز ہینڈ ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں نا سڑکیں بنا لیتے ہیں، پلز بنا رہے ہیں سب، لیکن جو تھنک ٹینک تھا نا ہمارا، وہ باہر چلا گیا. بنی اسرائیل نے بھی یہ کیا، ان کا تھنک ٹینک ختم کر دو تاکہ چلے جاؤ. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اس وقت میں اور آپ کہانی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اب ان کا مقدر بدلے. بظاہر آپ یہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کے لیے اس میں بہت بڑی خیر ہے اور آگے بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور اس طرح سے رکھ دیا. خیر، یہاں تک کی بات ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ والی بات، اگلی آیت پہ جائیں گے تو آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گی. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا. فَرَقْنَا کا معنی کیا؟ فَرَقَا، فرقہ لفظ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کیا ہوگا؟ کہ ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا کو پھاڑتے ہوئے عبور کیا. مراد یہ ہے کہ جس دریا ایسے پار کروا دیا جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر پار کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں لفظ دیکھیے، فرقنا، دو لفظ ہیں، پیچھے کیا تھا؟ اغرقنا، وہاں فرق تھوڑا سا دیکھ لیں. ایک لفظ ہے فرقنا، را پہ شد ہے ادھر کے نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہاں کیا؟ فرقنا. تو فرق یفرقو فرقن اور فرقانن جدا کرنے کو کہتے ہیں. یہاں تھوڑا نہیں ہے، ایک دم دریا پھٹا تھا. اگر یہ لفظ آپ غلطی سے پڑھ دیں نا، وفرقنا بکم، یعنی راہ پہ شٹ ڈال دیں، تو معنی پتہ کیا ہوگا؟ پہلے تھوڑا سا دریا پھٹا، پھر کچھ عرصے بعد ذرا بڑا ہوا. فرق میں سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، وہی معنی جو پیچھے آپ کو زبہ ہمیں بتائی. تو فرق نہیں، فرقا، فرقا، ایک دم دریا پھٹا اور مسلمان جو تھے وہ باہر نکل گئے. وفرقنا بکم البحر، بکم کون ہے؟ بنی اسرائیلی سارے کے سارے. بحر کون سا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دریائے نیل ہے، حالانکہ میں نے خود بھی دیکھا ہے دریائے نیل اتنا بڑا ہے نہیں، آپ اس کو ویسے ہی گزر جائیں، اتنی بڑی چیز نہیں ہے وہ. یہ بحر قلزم تھا. اگر ایجپٹ میں جائیں تو ایک ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے، مجھے خود بھی، میری جو ٹیچر تھی، مجھے بہت شوق تھا اس کو دیکھنے کا. تو وہ جگہ تو دور تھی جہاں ہم ٹھہرے تھے، قاہرہ اور الیگزینڈرا، लेकिन उन्होंने मुझे मैप से दिखाया था कि ये बेसिकली वहां दबहरे कुलजम। अब दरिया तो इतना बड़ा होता है, समंदर भी बहुत बड़ा होता है, तो मैं अक्सर सोचती थी कितना कहाँ फटा होगा। तो असल में पता क्या है कि जैसे आप देखें कि एक लूप सा नहीं निकल आता बाहर, मसलन मैं आपको किसी एग्जांपल से, तो जैसे बहुत जगह पानी है तो उसमें से एक नोक निकलती है, ऐसे दरिया का वो कोना है, ऐसे नोक निकल आती है कि अगर उसमें से यूं आप गुजरे ना तो वो भी कई कई मील की बनती है, छोटी नहीं है लेकिन वो हजारों लाखों मील नहीं है, वो वहां नोक के अंदर रास्ता बना था। ये अल्लाह की कुदरत थी और आज भी अल्लाह ताला ने उस चीज को यहां सामने करके हमारे बता दिया कि देखो हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ा, फन जईनाकुम, फिर हमने तुमको निजात दी, और अग़रकना आले फिरौना, और हमने डुबो दिया आले फिरौन को, वान तुम तंजुरून, और तुम देखते थे। अब यहाँ थोड़ी सी बातों को सामने रख के देख लीजिएगा, दो बातें, फरकना के बाद क्या आ रहा है, बीकुम, ये बा हाईलाइट करें, ये बा आपको हर जगह तंग करेगी, 17 मानी है ये, वो कहते हैं ना वो जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती है, फरक ना बीकुम, यहां बा किस मानी में होगा, तुम्हारे लिए, साथ नहीं है फिर तो तुम भी फट गए, यानी फरक ना बीकुम, हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ा, मतलब ये कि सबके लिए नहीं फाड़ा। और वाकई आपने सुना हुआ है कि कैसे फिरौन ने पीछा किया और बनी इसराइल निकल रहे और मूसा अलैहिस्सलाम आ गए थे, कौम चुके भी उसकी तरबियत नहीं हुई थी, उनको पता ही नहीं था, मूसा पे बदगुमान होने लगे, ये तू क्या हमें हमारे घरों से रहे। देखिए जरा आप नोट कीजिएगा, यहाँ भी एक बड़ी टची बात है, पहले क्या कह रहे थे, अल्लाह को भेज जो हमारे लिए कुछ करे, तो जब अल्लाह ने भेजा तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ती ना। अब जब मूसा के लिए सब मेहनत की, वहां से स्केपिज्म हुआ, इनके घर अलग हुए, तो फिरौन को पता चला कि ये इनको को लगता है सिखाने पढ़ाने लग गया, तो फिरौन के जुल्म बढ़े, तो ये आके मूसा को कहते थे ये तेरे आने की वजह से सारी मुश्किलें बढ़ी हैं, ना तू आता ना ऐसा होता। इतनी जल्दी बदगुमान होती थी ये कौम, और आज भी यही हालात है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे दे, तो मूसा अलैहिस्सलाम पे बदगुमान होते थे। मूसा ने कहा चलो तो सही मेरे साथ चलो, अल्लाह का हुक्म देखिए, इनके पहले घर अलग किए गए, ये सारे किस्से हम पढ़ेंगे आगे, सूरत आराफ में बहुत डिटेल से आता है, क्या आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इनकी कम्युनिटीज अलग की, पहले एक घर बनी इसराइली है तो एक किप्ती का, एक बनी इसराइली तो किप्ती, तब उसमें से तो सारे निकलते तो पता चलता, पहले इनकी सबकी बस्तियां बहरे कुलजम के करीब एक टाउन, जैसे आज भी आप कहते हैं ना स्टोवनर में बहुत मुस्लिम है, फिरसत में बहुत है, तो वहां ज्यादा मुस्लिम ही है ना, तो फिर दूसरे लोग आपकी एक्टिविटीज इतनी नोट नहीं करेंगे, यही हुआ, इनको भी अल्लाह ताला ने ऐसे अलग करवाया। तो ये कौम बजाय इसके ये कहे कि मूसा हमारे लिए अपनी जान को खतरे में डाले, कहने लगे मूसा को मजा नहीं आया आपके आने से, आप आगे इनके जुमले पढ़ेंगे, हम तो तेरे आने से पहले भी मुश्किलों में थे, अब तो और ही पड़ गए। देखिए गुलामी करते थे, जूतियां चाटते थे, लेकिन चले मजे में तो थे ना, सोए हुए थे, कौमें जागती हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है, तो जब सामने दरिया पीछे से फिर दुश्मन आ गया, तो कौम ने क्या कहा, इन्ना लमुद्रकून, आगे पढ़ेंगे सूरत शुरू में, उस वक्त आप देखिए जरा नबी का हाल, कल्ला हर किस नहीं, इन्नमा या रब्बी, मेरे साथ मेरा रब सयादी, ये लीडरशिप इस वक्त मुसलमानों को चाहिए। हम छोटा सा दीन का काम शुरू करते हैं ना, और जरा सी उसकी वजह से हमें नींद भी अपनी मुतासिर करनी पड़े, या कोई माल लगाना पड़े, या वक्त लगाना पड़े, या एफर्ट करनी पड़े, हम कहते फंस गए, ना इनाम लिखाया होता, ना यस किया होता, क्या अपनी जान पे बोझ किया, मजे से उठो। जिस वक्त दुश्मन पीछे है और फिरौन भी अपने लौ लश्कर को लेकर आ रहा है, सामने दरिया है पीछे दुश्मन है, और कौम क्या कह रही, इन्ना लमुद्रकून, पकड़े गए मारे गए चूहों की तरह, हमने यही मारना था, घर में ही मर जाते, क्या मुश्किलों में डाल दिया। तो मूसा कह रहे हैं कल्ला हर किस नहीं, इन्ना मैया रब्बी, एक गम तकलीफ और दीन का वो तकाजा है जिसको एक बंदा इंजॉय करता है, वो कहता है वाह इससे ज्यादा तो मजा कभी आया ही नहीं। साहबा की कहानियां पढ़े, कहते थे जो मजा मैदान जंग में जाके आता है वो घर में नमाजें पढ़ने में कोई नहीं आता। देखिए तुम्हें तकलीफ है कि अपने ऊपर तीर तलवारें चलाओ, कहते नहीं मजा बड़ा आता है अल्लाह के रस्ते में जाके गोलियां खाने में, और दूसरा वो घर में कहता है इधर गोली आ ना जाए, कोई बुलेट प्रूफ हमारा ना बना लो। फर्क ईमान का है, जिनको मिशन प्यारा होता है ना वो कहते हैं इन्ना माइया रब्बी, सब चल जाओ सब छोड़ दो, इन्ना माइया रब्बी सयाह दीन वो जरा दिखाएगा। और बेचारे देखे हिजरत कर रहे हैं, अगर मैं गलत कमेंट ना कह दूं तो बनी इसराइल इस वक्त हिजरत के रास्ते में है, घर द्वार छोड़े तो भी है, नेकी भी करके रो रहे हैं, कई लोग वो नेकी करके ऊपर राख डाल देते हैं, वो कहते हैं हलवा पकाओ ऊपर सवा डाल दो, ये हालात है, निकले दिल में नहीं है ना ईमान, तो आपको दूसरे की मोटिवेशन पे कोई नेकी करने की तौफीक मिल भी गई ना, तो आप दिल में चिड़चिड़ी करते होंगे। यहां भी वही हालात हो रहे हैं। मूसा कह रहे कोई बात नहीं, ये बहरे कुलजम की मौजें मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं, मेरा रब मेरे साथ है। और वाइस परखना बिकुमुल वहरा फंजैनाकुम वगरकना अला फिरौन वअंतुम तंजुरून। वो पीछे वाले सारे दरिया के अंदर आ गए, उन्होंने देखा रास्ता बन गया, भागो एडवेंचर एडवेंचर। और रास्ता जब निकला तो ये सारे खुशी खुशी गए, उधर आखिरी मुसलमान बाहर और इधर आखिरी फिरौनी अंदर, और अल्लाह ने दरिया को वापस मिला दिया, सब डूब गए। अच्छा अब यहाँ चंद बातें सवाल जवाब की करते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? कितने लोगों का दिल मानता है कि दरिया फटा होगा? हाथ खड़ा करें, कोई शक नहीं आता आपको? हाउ इज इट पॉसिबल? तो फिर ये हम जो इधर से कहाँ जाते हैं, लाइक जर्मनी लोग जाते हैं, तो रास्ते में एक दरिया आता है, फिर उसमें कश्ती तैरते हैं, तो अल्लाह से अब क्यों नहीं रास्ता बनता? बल्कि ये बात कहते हुए मुझे अब एक छोटी सी मिसाल भी याद आ गई है। अगर आप लंदन से फ्रांस जाए ना, तो रास्ते में आप यूरो ट्रेन के थ्रू दरिया के अंदर से गुजरते हैं, समंदर के अंदर से गुजरते हैं। पहली दफा गुजरना था तो मेरा दिल बैठा हुआ था और सारा रास्ता हजरत मूसा याद आते रहे और बनी इसराइल याद आती रही। और वहां मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने जहां से जाना है वो समंदर के अंदर आधा पौना घंटा रहा, तो वो उनका वहीं दिल बंद हो रहा था कि पता नहीं इसने निकलना भी है कि नहीं निकलना। लेकिन इंसानों ने आज वो टनल्स बना ली है, अब वो टनल है उसका हिकमत है। क्या हकीकत में दरिया फटा था? बिल्कुल फटा था। आज वो लोग जो मौजज़ों का इनकार करते हैं ना, वो कहते नहीं कोई नहीं, ये ऐसी बातें करते हैं। तो हालांकि आपको पता है अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, दरिया भी उसका बदल दे। और वैसे भी बास लोग कहते हैं, अगर आप हिस्टोरियंस को देखें तो कहते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे मौजज़ात बाद में भी हुए। ये एक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, एक वाक्य 1934 में जनवरी का महीना था, रमजान से पहले एक अजीमुशान जलजला, इंडिया का एक शहर है बहार, तो उसके इर्द गिर्द के इलाके में एक जलजला आया था। तो कहते हैं कि पटना का शहर जो है उसमें तकरीबन दिन के 2:30 बजे हुए थे, बहुत बड़े मजमे ने अपनी आंखों से देखा कि गंगा, दरियाए गंगा जो इनका बहुत एक यानी होली रिवर भी है, गंगा जैसे वसी और इस दरिया का पानी चश्मे जदन में गायब हो गया और इतने चौड़े पार्ट में बजाय दरिया के धारे के खुश कैसे लाइन की तरह बहने लगे। यानी जलजला एक ऐसा आया कि वो सारा पानी जो है वो इकट्ठा हो गया। और कहते 4 से 5 मिनट तक ये मंजर लोगों की कसरत ने देखा और उसके बाद जब दोबारा जमीन सीधी हुई तो दोबारा पानी जो अपनी जगह पे मिला। ये अब ये इन्होंने वाक्य भी लिखा हुआ है, ये वाक्य है जो आपको बता रही हूँ, ये पायनियर इंग्लिश अखबार है, 2 जनवरी 1934 की शात है उसकी। तो क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है? अल्लाह ताला आज भी कुछ भी कर सकता है, रस्ते बनते हैं। हमारी एक साथी है अमेरिका में, मैं थी तो आज से कोई 8-9 साल हुए होंगे, बालाकोट में एक जलजला आया था, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत जबरदस्त तबाही थी। तो वहां से एक बच्ची फिर पाकिस्तान अमेरिका में ह्यूस्टन हमारे पास शादी होकर आई थी, तो वो क्लास में थी तो उसने सुनाया था कि उस दिन जब ये जलजला आया था तो मैं स्कूल में थी। और वो कहती है कि हम जब स्कूल में जाते थे तो हमारा स्कूल घर में जाते ना, तो इधर पहाड़ी सिलसिला था, बालाकोट में आपको कहते हिल्स हैं, तो कहती सुबह हम गए थे जैसे नॉर्मल जाते हैं, फिर जलजला आया तो हमने स्कूल में छुप छुपा के अपनी जान बचाई, जब जलजले के थमने के बाद हम बाहर आए तो कहती जो इधर के पहाड़ थे वो इधर आ चुके हैं, अभी भी ऐसे ही है, अप्स एंड डाउन। इज़ा ज़ुलज़िलत अल-अर्ध ज़िलज़ालहा व अख़रजत अल-अर्ध अथ्क़ालहा व क़ाला अल-इंसानु मा लहा। तो याद रखिए ये अल्लाह की शान है, वो मूसा का ऐसा नहीं था, ये जुमला भी आप जम बना दें, वो ऐसा मूसा नहीं था, वो हुक्म खुदाबंदी था। कुन फयकून का मालिक एक छोटे से असा से रास्ता बना सकता है। आज उम्मत मुस्लिमा जो इतने खतरों में घिरी हुई, कहीं जंग के खतरे, कहीं मुश्किलों के खतरे, कहीं बच्चों के बिगाड़ के खतरे, कि अल्लाह सुबहान तला उसको नहीं रोक सकता? नहीं, पहले वो जरबे कलीम तो पैदा करे। हाथ मूसा का होगा ना तो मूसा के पास तो असा था, हमारे पास तो आज कुरान है। अल्लाह तला ने इबरत के लिए फिरौन की लाश को महफूज कर दिया। आप आगे पूरा वाक्य पढ़ेंगे, यहाँ बस इतना ही कह दिया कि फिरौन को डुबो दिया, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे फिरौन डूबा, उसको पानी ने जगह ही ना दी। अलआन वक़द असैतम क़ब्लु वकुंत मिनल मुफ़सिदीन, ये अल्लाह ताला आगे मुकालमा हमें सुनाएंगे। डूबते वक्त फिरौन भी मुसलमान हो गया, कहने लगा अमन तो बे रब्बी मूसा व हारून। अच्छा आलाना, अब बड़ी देर की मेहरबान आते आते उस वक्त, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त ईमान को बोलने की, और हर रिवायत में आता है कि जिब्राइल ने पकड़ कर खाक उसके मुंह में डाली, क्योंकि अल्लाह को इस वक्त भी ना इस पर रहम आ जाए। हाल इसको ईमान गरगरा कहते हैं। आज भी वो जगह पे हमाम हमाम कहते हैं ना नहाने की जगह को, हमाम फिरौन के नाम पे वो जगह मौजूद है जहां से अभी कुछ अरसा पहले फिरौन की लाश मिली है। अल्लाह ने वहां कहा था अल्यौम नुनज्जी कभी बदनी का, हम तेरी तेरी जिस्म को निशानी बना देंगे और क्यामत तक के लिए निशानी है। तो इन्होंने मुख्तलिफ औकात पे यहाँ से इनके जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो कहते हैं कि ऐसा वक्त आया था कि फिर वहाँ से चंद लाशें निकली, इन्होंने उनको जमा किया, हनूद किया, अहराम मिस्र जो कि वो उनके पैरामिड्स है उसमें रख दिया गया। फिर वो कहते हैं कि अहराम मिस्र की खुदाई के दौरान एक हॉल था, तो उन्होंने देखा उसमें कुछ फ्राइना, फ्रॉन है ना तो उसकी जमा फ्राइना होती है, तो बहुत सारे फ्राइना की लाशें पड़ी हुई हैं और बाज उसमें कुछ थी। तो लोगों ने जब उस पर रिसर्च करनी शुरू की, कहते हैं ये 200 साल तक तकरीबन उन्हें हरामे मिस्र में ये पड़ी रही हैं। और बाद में जब लाशें खोली, फ्रेंच लोग गए थे वहां से ये सारी डिस्कवरीज करने, तो कहते हैं कि एक फिरौन ऐसा था कि जिसकी नाक कटी हुई है आगे से और उसके जिस्म पर नमक है। तो फिर वो परेशान हो गए कि इसकी क्या खास बात, उन्होंने पूछा ये बताओ क्या तुम्हारी ये हिस्ट्री या जैसे बनी इसराइल हिस्ट्री में आता है कि कोई फिरौन डूब के भी मरा था, क्योंकि नमक जो इसके ऊपर लगा हुआ ना ये समंदरी नमक है। तो उन्होंने फिर सोचा और आखिर करते करते ये कुरान की आयत है, उन्होंने जब कुरान के इस बात को, तो ये उस वक्त ये बात सच साबित हो गई थी कि मुस्कुरान ने जिस फिरौन का जिक्र किया, और कहते हैं कि नाक क्या कि समंदर की मछली ने उसको खाने की कोशिश की थी लेकिन वो खा नहीं सकी क्योंकि अल्लाह ने उसके बदन को रखना था, और वो उन्होंने बाद में फिर उसको खुद हनूत करके रखा है। और अब आपको पता दुनिया के मुख्तलिफ म्यूजियम्स में उसकी लाश को घुमाते फिराते हैं, 100-100 पाउंड उसकी टिकट लगा के लोगों को दिखाते हैं, लेकिन इबरत कोई नहीं है। असल बात यह है कि ये सारी चीजें देखने से क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला की बातें सच्ची। अल्लाह ताला जब भी बंदे को अपनी को ऐसी निशानी बताए ना, तो हमेशा अपने लिए अनयूजुअल दुआ कर लिया करें कि अल्लाह तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, तो अल्लाह ताला तो मेरे लिए भी आसान कर दे। और यहाँ से आप देखिए कि मूसा की जिंदगी का एक दौर पूरा हुआ, बनी इसराइल को निजात मिल गई, फिरौन डूब गया, अब क्या था अगला मरहला क्या था आप बताइए। अभी तो सुना शुरू में, जाना किधर था इन्होंने, हिमाल का शाम, नहीं जा रहे हैं, अब क्या वो बैठे रहो इसी वादियती में। अब यहाँ लिख लें अपने पारों में कि ये अब वादियती के वाक्यात है। पिछला वाक्या फिरौनी कल्चर का आखिरी स्लॉट था, फिरौन डूब गया, लोग बाहर खड़े खड़ाए थे, अब क्या हुआ आइए देखते हैं। 51-52 वही स्वात नमूस अरबईन लैलतन, और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों का वादा दिया, सुम्मत तखस तुम ले चला, फिर तुमने बना लिया बछड़े को, मिम बाद ही उसके बाद वान तुम जालिमून और तुम जालिम थे, सुम्मा अफाउनान कुम फिर हमने तुमसे दरगुजर किया, मिम बाद ही जालिक इसके बाद लाल लकुम तश्कुरून ताकि तुम शुक्र करो। जरा लफ्जों पे गौर करते हैं, वैस वादना, लफ्ज वादा देखिए अपने पास लिखिए फिर समझ आएगा, जुबानी सुनकर नहीं समझ आती बात। एक होता मैं तुमसे वादा करती हूँ, लिखेंगे वाह पे जबर, आइन पे जज़्म करने वादा, दाल पे जबर और हा पे वादा। यहाँ ये लफ्ज है नहीं, यहाँ लफ्ज है वा अदना, वाओ के बाद अलिफ है फिर दाल है। तो एक होता है लफ्ज वादा, लफ्ज वादे के अंदर उम्मीद होती है, मैं आपसे वादा करती हूँ ना, कोई भी वादा कर दिया, लेकिन यहाँ लफ्ज वादा नहीं है, वा अदना। और अरबी जुबान को समझिएगा, अलिफ लग जाती है ना दो लफ्जों के रूट, जैसे आप इसका रूट क्या कहेंगे, वाओ आइन दाल। अब आप मेरी तरफ देखें जरा, वाओ आइन दाल, दो तीन लफ्ज है ना। मैं इंशाल्लाह किसी वक्त आपको फिर रूट वर्ड्स खिलाऊंगी, मुझे पता है आज आपने काफी गलतियां की होंगी, लेकिन इट्स फाइन, ये गलतियां आपको फिर कभी भी नहीं भूलने देंगी कि क्या गलत हुआ था। वाओ और आइन और दाल तीन लफ्ज है ना, तो रूट के दो लफ्ज वाओ और आइन के बीच में जब अलिफ आ जाता है ना, तो म्यूचुअल एक दूसरे पर असर डालना। मसलन देखिए, मुआशरा, मुकाबला, मनाजरा, मुबाहला, यहाँ क्या हो रहा है आप देखेंगे ये असूल है, अलिफ लगती है। यहाँ वादना से मुराद सिर्फ वादा नहीं है, अपॉइंटमेंट है, दो का आपस में मामला करना। तो यहाँ असल में मूसा अलैहिस्सलाम को अब अगला मिशन दिया जा रहा है, मूसा अपना पहला मिशन पूरा कर चुके हैं, अब अगला क्या था कि इस कौम की जो 40-50 कितनी सालों से गुलामी में गुजार रही है, अब इनकी तरबियत की जाए। अब यहाँ असल में मैं अपने तौर पे अगर रिलेट करूं, और हमेशा करती हूं तो आपसे भी जरूर करूंगी शेयर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दो हिस्से हैं, मक्की दौर और मदनी दौर। मक्की दौर तो आप लोग भी सीरा कोर्स में पढ़ चुके हैं, राइट, 13 साल का था ना, 13 साल के बाद मुसलमान कहां आए, मदीना आए। تو پھر شریعت وہاں ملی نا، اس وقت بنی اسرائیل کہہ لیجئے کہ مکی اور مدنی دور کے بیچ کے دور میں، فرعون سے نجات ہو گئی، جیسے مسلمانوں کو مکہ کے کافروں سے نجات مل گئی، اب فرعونیوں سے یہ نکلے اب آزاد تھے، اب مدینہ میں جائیں گے، اب آخر انہوں نے آگے جو نہیں جانا تو اب کیا کیا جائے، بیٹھے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے اب تورات دینی، اب تورات نازل ہوگی. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں رہے، فرعون کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام اس کے ارد گرد ہی رہے نا شروع سے، بیچ میں 10 سال کے لیے نکل بھی گئے تو کوئی بات نہیں. اور ایک بات لکھ لیں، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے شدید محبت کرتا تھا. یہ ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ میں، والقیت علیک محبت منی، اسی لیے ساری زندگی ان کو مار نہیں سکا. اور اللہ کا حکم دیکھیے، اللہ نیک لوگوں کی محبت فرعون کے بھی دل میں ڈال دیتا ہے. موسیٰ کی سچائی تھی. اب یہاں کے ذرا سا پڑھ کے دیکھ لیں، موسیٰ کو اللہ نے 40 لیلہ 40 راتوں کا وعدہ دیا. 40 کا لفظ ربا سے، ربا کہتے ہیں 4 کو، تو 40 این عربی زبان میں 20 کے لیے ہوتا ہے، جیسے عشرین عشرون، رائٹ؟ تو 40 اور 40 دونوں میں فرق ہے. اس میں گنتی کا میں نہیں بتاؤں گی آپ کو فرق ہے 40 یا 40 کیوں آیا ہے، لیکن بس یہ بتا دوں کہ یہاں 40 ہی آنا چاہیے تھا، 40 ہوتا تو معنی بدل جاتا، ٹھیک ہے. لیلہ کا لفظ کیوں آیا؟ راتیں، یہ رات اور دن دونوں ہی تھے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کتنے دن کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 6 دن کے لیے. تو کیا اس میں رات نہیں آتی؟ لیکن ہم دن کیوں گنتے ہیں؟ کیونکہ سولر کیلنڈر میں ڈیٹ کب بدلتی ہے؟ سورج کے ساتھ. عربی زبان میں رات پہلے آتی ہے، چاند کے ساتھ جو کہ معاملہ نا، تو یہاں لیلہ سے مراد رات اور دن ہے. تو لیلہ کیوں آیا؟ کیونکہ عربی کا کیلنڈر رات کے ساتھ چلتا ہے. ثم پھر اتخذتم، یہ بھی ایک اپنی جگہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، بنا لیا، پکڑ لیا تم نے. اخذہ کہتے ہیں پکڑنے کو، اتخذہ تا ڈل گئی اس میں، باب افتیال. اتخذہ کیا ہوتا ہے؟ جم کے پکڑ لینا. مراد یہاں کیا ہے کہ تم نے پھر اس بچڑے کو جس کا آگے ذکر آنے والا ہے اس کو معبود بنا لیا، تم نے پکڑ لیا العجلا. عجل لفظ بہت دفعہ سنیں گے آگے بھی جا کے. کہتے ہیں گائے کے 1 مہینے کے بچے کو، اونلی 1 منتھ اولڈ بیبی، بڑا ہو جائے گا نا پھر عجل نہیں رہے گا. اچھا، اس سے ملتا وہ کوئی لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جو لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں؟ چلے مثال دے دیتی ہوں سورہ بنی اسرائیل، یہ سارے پرپلز کا والے، ایسے وقت پہ تو دل کرتا ہے سفید ہی پہن لیتے ہیں، رائٹ رویہ جی؟ من اراد العاجلۃ فعجلنا فیہا. عاجلا کس کو کہتے ہیں قرآن میں جی فرا؟ عاجلا کوئی نام نہ رکھ لے اپنی بچی کا. دنیا دیکھیے، دنیا کو عاجلا کہتے ہیں، اور سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من اراد الاخرہ اور من اراد العاجلۃ. دنیا کو عاجلہ کیوں کہتے ہیں؟ جلدی ملتی ہے، وہی اجلت ادھر ہے. گائے کے بچے کی ایک عادت ہے کہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے بعد کھڑا ہونا چاہتا ہے، چاہے پھر گر جائے. تو یہاں گائے کے بچے کو، اور وہ بھی چھوٹا، اجل کیوں کہا یہاں، بڑا کیوں نہیں کہا؟ اس کے بھی کئی نام ہوتے ہیں، لیکن یہاں اجل سب سے چھوٹا بچے، کیوں؟ حقارت کے لیے. خدا بنایا بھی تو کس کو بنایا، یہ مراد ہے. اچھا ذرا اپنے اوپر لے کر سوچے، کسی چھوٹے سے بچے کو کوئی خدا بنا لے کیسا لگے؟ اور گائے کے بچے کو، آج دنیا میں گائے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، گاؤ ماتا کا نام سنا ہے، بٹ کبھی آپ نے سونے چاندی کی بنی ہوئی ایک ڈمی گائے کو پوچھتے کسی کو دیکھا؟ اس سے بھی زیادہ نہ سمجھی کی کوئی بات ہے. اور آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سبق، ایک سبق کے بعد آگے آئے گا گائے کا واقعہ. اور یہ یاد رکھیں سورہ بقرہ ہے، وہاں میں آپ کو ڈیٹیل بہت ساری ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ آخر یہ گائے کے واقعے سے کیوں، سورہ بقرہ کیوں ہے. لیکن یہاں نوٹ کر لیں، عاجلہ دنیا کی محبت، اور وہاں جا کے اب دیکھیں گے صفرا زرد سونے کی محبت گائے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. اور یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک مت ہے، مصری جو تھے یہ گائے کی پوجا کرتے تھے. اب گائے کی پوجا کرتے دیکھ کر یہ تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ تو مسلمان تھے، لیکن وہ دل میں ایک محبت بیٹھ چکی تھی. پھر یہ گائے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہاں بچڑے کی بات ہے، آگے گائے کی آئے گی، یہ ہے وہ ہے. بلکہ آپ یہاں نوٹ کریں کہ یہاں قوم نے بچڑا بنایا تھا نا، لیکن بنی آج کی بائبل کیا کہتی ہے، نعوذ باللہ، کہ ہارون علیہ السلام نے بھی ان کی مدد کی تھی. یہ انہوں نے ہمیشہ نبیوں کے ویوز کیا. قرآن نے حضرت ہارون کی صفائی پیش کر دی کہ نہیں، یہ تم مت تخص، تم یہ تم تھے جنہوں نے بچڑا بنایا. ممبادی اس کے بعد، کس کے بعد ہی سے مراد؟ موسیٰ کے تور پہ جانے کے بعد، और फिरौन के डूबने के बाद दो रीजंस लिख लें, वन तुम जालिम उन तुम हो ही जालिम, यहां जालिम से क्या मुराद है, मुशरिकून, शिर्क किया ना। और जुल्म क्या होता है, किसी का हक ना देना या दूसरे का हक उसको दे देना। बनी इसराइल ने गाय का ये बछड़े का तसव्वुर कहाँ से किया, तो नोट कीजिए कि मिस्र में जो मुख्तलिफ पेगन कल्चर थे उनमें से एक तसव्वुर क्या था कि जो हमारा खुदा है ना वो गाय के रूप में आ सकता है, लिहाजा वो अपने खुदाओं को बादशाहों को इस सोच के साथ पूछते थे कि ये हमारे पास उनके रूप है। याद रखिए जब मुसलमान कौमें किसी भी कौम ऐसे लोगों के साथ रहती हैं ना उनमें भी ऐसे ही ख्याल आ जाते हैं। आज मुसलमानों में भी कुछ इसी किस्म की चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क है रंग का। आप देखिए आप शादी में जाएं आपको मुस्लिम और इंडियन शादी में फ़र्क नहीं दिखेगा। अपनी जगह हिंदुइज्म बहुत अच्छा मज़हब हो सकता है, इस्लाम अपनी जगह, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन जब मुसलमान एक साथ रहते हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि मुसलमानों पर इंडियन हिंदुओं का रूप आता है। हालांकि मैं आपको मज़े की बात आज एक सुनाती हूँ, हिंदुओं पर भी मुसलमानों का बहुत असर आता है। आप सोचे ना कि मुसलमान उनके रंग में रंग जाते हैं, तो हिंदू भी बहुत सारे मुसलमानों के रंग में रंगे हुए। अल्लाह ताला कहता है सुम्मा फ़ौनान को, फिर हमने तुमसे दरगुजर किया, वन मिम बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। ये कौन सा शुक्र है? ये शुक्र है कि चेंज करो अपने आप को। बार बार अल्लाह उम्मतों को कौमों को मौके देता है ताकि वो अपने आप को बदलें बदलें, लेकिन कौमें नहीं बदलती, दरगुजर किया। और ये जो 40 रातों की बात है ना, हम सूरत आराफ में पढ़ेंगे, शुरू में 30 रातों की अपॉइंटमेंट हुई थी अल्लाह ताला के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन मूसा का दिल ही नहीं किया आने को, तो 10 दिन और बढ़ा लिए। यानी हम नमाज शुरू करें 10 मिनट के लिए और शुरू कर लें तो दिल ही ना करें ख़त्म करें। शुरू में सोचते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे बहुत है, शुरू किया तो दिल के असर मुल्कपुरी पढ़ लें, फ़र्क होता है ना। तो ये 30 से 40 रातें मूसा की अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की भी दलील है, और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला तनहा करता है। सवाल पैदा होता है मूसा को अलग क्यों किया गया, वाय वहीं कौम के बीच में तो रात उतरती, तो यहाँ लिखिए यकसुई, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ और मेरा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कहती ही रहूँगी, बड़े काम करने वाले जब तक फोकस्ड ना हो वो काम नहीं कर सकेंगे। इल्म के लिए तन्हाई चाहिए। जब बंदा अकेला होता है ना तो उसके अंदर खामोशी उतरती है। वो कहते हैं ना अल्लाह वो खामोशी दे कि मैं तेरी आवाज़ सुन सकूं। बहुत नाच दौड़ गाना, हर वक्त भागा दौड़ी लगी है, दावतें पार्टी फेस्ट हो रही, ये हो रही वो रही, इसमें मोहब्बत नहीं आती। नबी सल्लम भी तो 40 साल की उम्र में आप देखिए के बाद गारे हिरा में जाने लग गए ना, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस करें किस तरह से अल्लाह ताला दुनिया के बेकाबों से और ख़राबियों से निकाल कर आपको मुझे यहाँ लाता है।